आके आयत 6 में वुजू के फराइज का जिक्र है। आप देखिए कि पूरे कुरान में ना तो नमाज का पूरा तरीका है ना वुजू का, इशारतन कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं। क्यों? अभी मैंने एक जुमला बोला कि कुरान की डिक्शनरी हदीस है, तो आपको वुजू का पूरा तरीका हदीस से मिलेगा, लेकिन यहाँ सुन्नतें नहीं, फराइज का तذکرہ ہے۔ ابھی دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہاں تک ایک، پھر وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ کیا پتہ چلا کہ وضو جو کہ نماز کی شرط ہے، اور وضو کی شرط کیا ہے؟ نمبر ایک، طہارت، پاک ہو انسان، بہترین طریقے سے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے۔ आप देखिए कि वुजू के साथ एकदम इंसान अपने आप को पाक महसूस करता है, इसलिए हुक्म है कि कसरत से वुजू में रहो। मोमिन अपने वुजू की हिफाजत करता है, फिर आप वुजू करेंगे ना तो रूहानी सुकून मिलता है, स्पिरिचुअली आप अपने आप को अप फील करते हैं। अगर आप में से किसी को डिप्रेशन की बीमारी है, एंग्जाइटी है, आप डाउन फील करते हैं, तो बस वुजू से रहने की आदत डालिए, आप देखिएगा बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर इसी तरह सगीरा गुनाहों की माफ़ी, हमारे जिस्म के जिस उज़्व से पानी गिरता है उसके गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं हदीस की रोशनी में, और रोज़े क़यामत वुजू के अज़ा चमकेंगे, कितनी खूबसूरती होगी उस दिन अगर आप इसको समझें। फिर इसी तरह वुजू की शरायत क्या है? नंबर एक, दिल में नीयत, और नीयत क्या है? अल अमलुल कल्ब। ज़ुबान से जब लफ्ज़ अदा होते हैं तो वो तो कौल बन जाता है। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना, फिर आज़ाद तरतीब से धोना, यानी जो तरतीब अल्लाह ने बता दी और नबी सल्लम ने करके दिखा दी वही तरतीब है, यानी कि पहले आप पाँव धोने लग जाएं और बाकी काम करते हुए एंड पे मुंह धोएं, ऐसा नहीं है। फिर तीसरी बात है कि अज़ा को ताक तादाद में धोना, यानी ऑड नंबर, यानी 1, 3, 5, बस एक दफ़ा से भी वजू हो जाता है, लेकिन मसनून तरीका 3 तक का था। फिर बाल बराबर जगह खुश्क ना रहे। अब देखिए, आपने कहीं भी जाना हो और बड़ी मोहब्बत से जा रहे हैं, कितना वक्त लगाते हैं तैयारी में? जहाँ जितनी मोहब्बत और खुशी ज़्यादा, वहाँ एहतमाम ज़्यादा ना। दोस्तों को मिलना है, फैमिली को मिलना है, भाई बहनों से मिलना है, शादियों में जाना है, तो नमाज अल्लाह से मुलाकात है। जिसको जितनी अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी ना, वो उतने खूबसूरत तरीके से वुजू करेगा। अल्लाह ताला हमारे वुजू खूबसूरत तरीके से करने वाला हमें बना दे। इसके बाद आयत नंबर 7 का टॉपिक है, इस्लाम एक नेमत और कलमा तैयबा एक अहद है। आप कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदा रसूलुल्लाह। अल्लाह ने इस आयत में क्या दिया पैगाम? वस्कुरु नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमत को अपने ऊपर याद करो। व मीसाकहुल्लज़ी वासकक़ुम बिही, और वो अहद या वादा जो तुमने उसके साथ पुख्ता किया। इस कुल तुम, जब तुमने कहा समेना वाताना, इसको हाईलाइट कीजिए, समेना वाताना, हम सुनेंगे और मानेंगे। ये है मेरा आपका मुकाम। कुरान की जो बात इस वक्त भी आपको समझ आ रही है, आपके कानों से टकरा रही है, उसको सुनने के बाद कहिए इंशाल्लाह मैं मानूंगी। ये जो हजर उम्रे में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हैं ना, ये सिर्फ वहीं नहीं छोड़ के आना होता, इसको जहाज़ में सूटकेस में भर के साथ लाना चाहिए, क्योंकि ये साथ आएगा ना तो फिर आप अपनी बाकी ज़िंदगी में हर नेकी के मौके पे क्या कहेंगे? लब्बैक। कोई बात सुनेंगे तो कहेंगे समेना वाताना, और कवत्तकुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर, अल्लाह से डरो क्योंकि अल्लाह ताला सीने की बातें जानता है। तो इस्लाम हकीकत में एक नेमत है। ज़रा सा तसव्वुर तो कीजिए, अगर हमारे माँ बाप मुसलमान ना होते, दादा दादी नाना नानी ना होते, तो क्या इस वक्त हम मुस्लिम होते? क्या हमारे ईमान में इतनी हरारत है कि हज़रत बिलाल की तरह कोड़े सहकर भी इस्लाम पे आते? क्या हमारे पास इतना इल्म है कि हम इस्लाम से मुतासिर होकर मुसलमान होते? तो क्या ये नेमत नहीं? वी आर मुस्लिम बाई चॉइस और चांस। हम इत्तफाकन तो नहीं मुसलमान हो गए? जो इत्तफाकी मुसलमान होंगे ना, आने वाली नस्लों में ये इत्तफाकात भी ख़त्म हो जाएंगे, और अल्लाह ना करे कि फिर हमारी नस्लों में कोई कहे हाँ मेरे दादा नाना मामा बाप फला मुसलमान थे, और आज ऐसा हो रहा है। इसके बाद आयत नंबर 8 से 10 में, अदल के अलम बरदार बनकर खड़े हो जाओ। उम्मत मुस्लिमात दुनिया में अदल का झंडा पकड़ के खड़ी होती है, जितनी जंगें नबी के दौर में लड़ी गईं वो असल में इसी अदल को कायम करने के लिए थीं। इसलिए क्या फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना मनकूनू कवामीन लिल्लाह, अल्लाह के लिए कवाम बन के खड़े हो जाओ, यानी टेक अ स्टैंड। जैसे दुनिया में आप पसंद करते हैं ना कि लोग आपके लिए स्टैंड करें, सियासतदान चाहते हैं मेरे फॉलोअर्स मेरे लिए स्टैंड हो, मैं दावत दूँ किसी जलसे में आने की तो वो आ जाएँ वोट दें मुझे, माँ चाहती है कि मेरे बच्चे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए कि इत्तफाक करें, बीवियाँ अक्सर चाहती हैं कि मियाँ साहब मेरे बिहाफ पे स्टैंड लें, जहाँ मेरी कोई बुराई हो रही हो तो फौरन खड़े हों। अल्लाह ये चाहता है कि आप और मैं इस्लाम के सफीर बन जाएं, दुनिया में चलते फिरते मामलात करते अल्लाह ताला की तरफ लोगों को बुलाते हुए इस चीज़ का एहतमाम रखा करें कि हर इंसान अल्लाह ताला की तरफ से एक नुमाइंदा है जो लोगों तक पहुंचता है। और फिर इसमें अदल की भी बात करके बता दिया कि किसी से दोस्ती है या दुश्मनी है, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तअदिलू, यानी दुश्मनी और मोहब्बत दोनों में अदल का सामन नहीं छोड़ना। और साथ ही फिर तकवा की बात करके बता दिया वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात। अब देखिए पूरे कुरान में कहीं सिर्फ आमनू के ऊपर वादे नहीं हैं, आप अपना नाम तो मुसलमानों जैसा रख लें और दो नबियों के नाम मिलाकर नाम रखें बच्चे का, मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद अब्दुल्ला कह लें, चले अब्दुलरहमान क्यों ना कह लें, अल्लाह के नामों पे नाम रख लें। जब तक अमिलु सालेहात नहीं होंगे वो नाम काम नहीं आएंगे। अल्लाह कहते हैं ऐसे लोगों को फिर मैं बख्शूंगा जो ईमान के बाद अमल सालेह करते हैं। और इसके ऑपोजिट वल्लज़ीन कफरू व कज़्ज़बू भी आयातिना, देखिए एक कुफर है एक तकजीब है, दोनों ही अपने अपने दर्जे की एक गुनाह है। कहा भी आयातिना से तो आयतों की बात है, उलाइक असहाबुल जहीम ये जहन्नुम में रहने वाले हैं। तो क्या पता चला अब सिर्फ एक ही काम के बाद मेरी आपकी निजात है मुसलमान होने के बाद, और वो क्या है कि हम जो कह रहे हैं जो सुन रहे हैं उस पे अमल करें। फिर इसके बाद आयत 11 में भरोसा अल्लाह ताला पर करना है, ये मौजू है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू नेमतल्लाही अलैकुम, अल्लाह याद करवा रहे हैं मुसलमानों को एक नेमत जो उन पे है। क्या इज़ हम कौमन, जब इरादा कर लिया था एक कौम ने कि तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाएं और अल्लाह ने उनके हाथ तुमसे रोक दिए, और अल्लाह से डर जाओ और बेशक अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं मोमिन। असल में नबी सल्लम की ज़िंदगी में कई मौके पे दुश्मनों ने आप पे कातिलाना हमला किया, इसी तरह धोखे से सहाबा कराम को कई जगह पे मारा गया, कुछ लोगों को तबलीग के नाम पे बुलाया और वहाँ उनको कत्ल किया गया, हुफाज़े कराम जो थे रजी के वाक़े में कत्ल किए गए। इन सारे वाक़यात को जमा करके आज तक, मैं तो इसको आज भी ले आऊँगी, लोग कहते हैं अगर तुम मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ फिरोगे वेस्ट में तो तुम पे बड़ी मुश्किलें आएंगी, तुम्हारी चेकिंग मुश्किल हो जाएगी, तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा। भरोसा अल्लाह पे, ज़मीन भी अल्लाह की आसमान भी अल्लाह का, तो मुसलमान को कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वी शुडंट बी एम्बेरेस्ड मुस्लिम, वी शुड बी प्राउड टू बी मुस्लिम। कभी भी इस्लाम के ऊपर लोगों को शर्मिंदा ना होने दें, और अल्लाह पे नजरें होंगी तो अल्लाह ताला फिर हर वक्त आपको बचा भी लेगा मुश्किल चीज़ों से। इसके बाद दोबारा बनी इसराइल से जो अहद लिया गया था शरीयत का, उसका तस्करा है आयत नंबर 12 में, बिल्कुल वही अंदाज जो पीछे सूरत बकरा में भी गुजर चुका कि वलकद अखज़ल्लाहु मीसाक बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल से एक मीसाक लिया था और उनमें 12 सरदार दिए थे, और अल्लाह ने क्या कहा था इन्नी माकुम। अगर आप लफ्ज़ इन्नी माकुम को हाईलाइट कर लें अपने मुसहफ़ में, तो किसी मुल्क पे अल्लाह की मदद आने का या किसी लीडर किसी हुक्मरान के साथ अल्लाह की गैबी मदद आने का तरीक़ाकार इस आयत में लिखा हुआ है। पाकिस्तान पे अल्लाह की रहमत कब होगी, लाइन अकम तुमसला, अगर तुम नमाज कायम करोगे व आतई तुम जक़ा, ज़क़ात का निज़ाम बनाओगे व आमन तुम भी रसूली, फिर तुम मेरे रसूलों पर ईमान लाओगे व जर तुम हूँ, फिर उनको तुम तकवीत पहुँचाओगे व कर तुम्ला करदन हसना, और अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए माल जान वक्त लगाओगे लौकफ फिर तुम से ही आती हूँ, मैं तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर दूंगा वाला उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तख्तिहल अनहार, और तुम्हारे लिए वो जन्नतें खोल दूंगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। यानी ये है मुसलमानों को एड मिलने की शर्त। आज मुख्तलिफ नामों से हम एड के तलबगार होते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। किस मुल्क से, किस इदारे से, किस नाम से मदद लेने और भारी शराइत पे कर्जे लेकर अपने मुल्क को चलाने वाले सूरत मायदा की आयत 12 को दिल पे लिख लें। अल्लाह आपकी वो एड करेगा या अल्लाह आपको वो मदद देगा जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको तक एक रफ फिगर है, $1 जो गैर मुल्कों से मुसलमानों के आपके इस मुल्क में एड के नाम पे आता है, $1, उसमें से $90 उन्हीं के अपने सफारत खाने और उस प्रोसेस में लग जाता है, और जो 10% है ना बीच में से, वो आपके मुल्क के करप्ट हुक्मरान और जो भी लोग इसमें होंगे, सब तो ऐसे नहीं होंगे, लेकिन जिस प्रोसेस से गुजरता है, जो उनका अमला है, जो ख्यानते होंगी, खुर्द-बुर्द होगी, फेवरेटिज्म होगा, वो उसमें जाकर सिर्फ 1 पैनी, 1 पैसा आप गरीब अवाम तक पहुंचता है। और वही $1 जब आपने वापस करना है तो हो सकता है वो कितने गुना ज्यादा हो गया होगा। अल्लाह कहता है तुम मेरे से भी तो कभी मदद मांगो, इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन तो तुम कहते हो। हजरत उमर का दौर था, बारिश नहीं हुई, खुश्क साली थी और लोग मरने लगे भूख से। जब सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए तो हजरत उमर के दिल में ख्याल आया कि साथ एक नॉन मुस्लिम हुक्मरान है, हर दौर में कैसरो किसरा और ऐसे नजाशी और बुलाकी लोग रहते थे, हिरकल भी था। इन्होंने एक गैर मुस्लिम हुक्मरान को लिख दिया कि हमारे ऊपर इस वक्त एक मुश्किल आई हुई है, कुछ मदद कीजिए। खुशी खुशी उन्होंने एक बड़ा काफिला सामान से लदा हुआ भेज दिया, क्योंकि गैर मुस्लिम चाहते ही हैं कि मुसलमान हमसे मांगे, अल्लाह से ना मांगे, हमारे बंदे बन के रहे, अल्लाह के ना बने, क्योंकि वो डोमिनेंसी चाहते हैं, अपर हैंड चाहते हैं। इतना कुछ आया लेकिन चंद दिन बाद फिर ख़त्म। इसी दौरान अल्लाह ताला ने एक बदरी सहाबी को ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवाई और आपने बस एक जुमला बोला कि उमर को क्या हो गया, बस नाराज़गी का इजहार था। अगले दिन उन्होंने जाके हज़रत उमर को ख्वाब सुना दिया। अब तो हज़रत उमर को अपने ईमान की फ़िक्र पड़ गई, मजलिस शूरा बुला ली, उलमा को बुला लिया कि मेरी गलती ढूंढो। उन्होंने कहा कि उमर आपने सलातुल इस्तिस्का नहीं पढ़वाई कि बारिश ही हो जाए, और आपने एक गैर से मदद मांग ली। कहा अच्छा यही है, सब बाहर निकल जाओ, तौबा तिल्ला करते हुए जाके अल्लाह से बारिश की दुआ करो। और अभी वो नमाज पढ़ के नहीं उठे कि मदीना शहर पे बादलों ने इकट्ठा होना शुरू हुआ और ऐसी जलथल हुई, चंद दिन में कहत खत्म हो गया, सारा ड्राउट चला गया। क्या ये बात उस मदीना पे तो इस मदीना पे नहीं आ सकता? असल बात है कि हमारे अंदर इस चीज़ की गैरत हो और अल्लाह हमें गैरतमंद कर दे। फिर इसके बाद आयत 13 से 14 में बनी इसराइल की अल्लाह से रहमत की दूरी की वजह क्या है? अहद शिकनी, वादा खिलाफी है। फबीमा नक़दिहिम मीसाक़हुम, याद रखिए कल के मुसलमान जिनका तذکرہ यहाँ हो रहा है या आज के मुसलमानों, सब के अल्लाह की रहमतों से दूर होने की बड़ी वजह यह है कि वो कलमे के तकाजे पूरे नहीं करते। फिर इनके उलमा जो थे वो बातों को बदल देते थे, उनके दिल सख्त हो गए थे, किताबों का कुछ हिस्सा भूल जाना, कुछ छोड़ देना, सारी बातों को अल्लाह नबी के सामने पेश करके कहते हैं फाफ वन हूँ वसफा, जाने दीजिए, लेट इट गो, आप इनसे दरगुजर कीजिए और आप अपने काम पे फोकस कीजिए। अल्लाह सुबहाना ताला ने इनके अपने ही दिलों में बुग़्ज़ और अदावत डाल दी है। फिर उसके बाद आयत नंबर 15 से 16 में अहले किताब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पर ईमान लाने की दावत दी जा रही है। और आप देखिए कि खिताब के या अहलल किताब, कितनी इज्जत से अल्लाह बुला रहा है, ओ किताब वालों, ओ पीपल ऑफ द बुक, कद जाकुम रसूलुना, देखो तुम्हारे तो पास हमारा रसूल आ गया। देखिए कितनी महरूमी है मदीना वालों की, नबी मौजूद, कहाँ से मक्का से हिजरत करके नबी आपके पास आया है और आपको उसकी कदर ही नहीं है, आप अपने ही नटशल में घूम रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ नबी सल्लम की आमद को अहले किताब उलमा के लिए एक नेमत साबित किया, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं माने। तो रात तो बदल चुकी थी, हजफ हो चुकी थी, अल्लाह ने कुरान दिया। बिल्कुल आज मुसलमानों में हर उस मुसलमान पे आयत फिट होती है जो कुरान को छोड़कर फिक्शन पे लगा हुआ है, और जो नबी सल्लम की अहादीस और आपकी सुन्नतों और आपकी सीरत को पढ़ने की बजाय झूठी सच्ची कहानियाँ पढ़कर उससे नसीहत लेने वाला है। फिर फिर इसके बाद इसमें एक और बात पता चलती है कि मोमिनीन के लिए अल्लाह की रज़ा से बढ़कर कोई और चीज़ अहम नहीं, रब राज़ी तो जग राज़ी। फिर आयत 17 से दोबारा हज़रत ईसा का किस्सा चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माबूद नहीं मखलूक है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम। सूरह निसा के एंड पे ट्रिनिटी की बात थी, तसलीस। यहाँ नसारा का वो फ़िरका जो हज़रत ईसा को ही खुदा कहता है, नऊज़ु बिल्लाह, यानी जीसस गॉड का नज़रिया, उनकी बात करके अल्लाह ने बता दिया कि ये दिल पे रख लो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं बल्कि अल्लाह के नबी और उसके बंदे हैं। आयत 18 है, अहले किताब के साथ ही अब अल्लाह ताला एक पैगाम देते हैं कि तुम अल्लाह के महबूब होने का दावा तो करते हो लेकिन क्या तुम उसकी बात भी मानते हो। उनका एक जुमला था बड़ा फेवरेट, वकालतिल यहूद वन नसारा नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु। अल्लाह ने उसको कोट कर दिया, कहा अच्छा, यू आर चोजन पीपल, यू आर बिलवेड ऑफ अल्लाह सुब्हानहु तआला, उसके चहेते हो, तो बताओ फिर अल्लाह ने तुम्हें तारीख में इतनी दफ़ा सजाएं क्यों दी। क्या पता चला कि दावों से कुछ नहीं होता, असल दलील है अमल से।